अंतःकरण त्रय में बुद्धि की प्रधानता। कारिका, एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्सनं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। अन्वय, एते गुण विशेषा परस्पर विलक्षणा प्रदीप कल्पाः पुरुषस्य कृत्सनं अर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। कारिकार्थ, त्रिगुण के विकार स्वरूप श्रोत्रादि दस मन और अहंकार विषय ग्रहण की परस्पर विलक्षणता भेद से विशिष्ट हुए भी प्रदीप के प्रकाशक तत्वों बत्ती तेल तथा अग्नि की भांति परस्पर मिलकर पुरुष को समस्त पद पदार्थ स्फुरित हो सके तदर्थ स्वगृहित समस्त विषय बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। भाष्यम्, किंचान्यत् यानि कर्णान्युक्तानि एते गुण विशेषाः किं विशिष्टः प्रदीप कल्पाः प्रदीप विषय प्रकाशकाः परस्पर विलक्षणाः असदृशाः भिन्न विषयाः इत्यर्थ गुण विशेषेति गुण विशेषाः गुणेभ्यो जाताः कृत्सनं पुरुषस्यार्थ बुद्धिन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि अहंकारो मनश्चैतानि स्वस्वमर्थं पुरुषस्य प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति बुद्धिस्थं कुर्वन्तीत्यर्थ यतो बुद्धिस्थं सर्वविषय सुखादिकं पुरुष उपलभते। गौणपाद भाष्य का भावार्थ, गत कारिका में बाह्यकरण की अपेक्षा अंतःकरण की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई है। संप्रति अंतःकरण के त्रिविध तत्वों में भी बुद्धि को प्रधान बतलाते हुए उसका सर्वोच्च स्थान सिद्ध किया जा रहा है। पीछे जिन करणों की चर्चा हुई है वे ही प्रस्तुत कारिका में गुण विशेष शब्द से कहे गए हैं। इनमें कौन सा वैशिष्ट है इस शंका के स्पष्टीकरण के लिए प्रदीप कल्पाह पद आया है। ये विषयों को उसी प्रकार प्रकाशित करते हैं जिस प्रकार दीपक गुणों की प्रदीप तुल्यता को 13वीं कारिका में विस्तार पूर्वक समझाया जा चुका है, अतः वही द्रष्टव्य है। ये करण एक दूसरे के सदृश नहीं है क्योंकि इनके विषय भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सोत्र शब्द को ही ग्रहण करता है, स्पर्श आदि को नहीं, वाणी से वाक् व्यवहार ही किया जाता है। पदार्थ का ग्रहण गमन तथा आनंद आदि नहीं, मन संकल्प करता है, अभिमान नहीं, अहंकार अभिमान करता है, संकल्प नहीं। इसी प्रकार अन्य करणों को भी भिन्न भिन्न विषय वाला समझ लेना चाहिए। करणों की असंबद्धता इस प्रकार भी समझी जा सकती है, जैसे देवालय में चक्षुरिंद्रिय भगवान मूर्ति का अवलोकन कर रही है और मन पर स्त्री चिंतन में सराबोर है, इत्यादि इत्यादि। करणों को उत्पत्ति त्रिगुण से होने के कारण उन्हें गुण विशेष कहा गया है। इस प्रकार करणों की त्रिगुणात्मकता भी सिद्ध होती है। उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त द्वादश करण अपने अपने विषय बुद्धि के द्वारा पुरुष को प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि पुरुष बुद्धि में स्थित विषयों को ही प्रतिबिंब विधेया ग्रहण कर पाता है। इसलिए बाह्य तथा आभ्यंतर करण अपने अपने विषय बुद्धि को सौंपते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने तत्व कौमुदी में लौकिक उदाहरण द्वारा विषय समर्थन के उक्त गुण सिद्धांत को अत्यंत सुबोधगम्य बना दिया है। उनका वक्तव्य है, जिस प्रकार ग्रामाध्यक्ष किसानों से कर लेकर जिलाध्यक्ष को सौंपता है और जिलाध्यक्ष सर्वाध्यक्ष को, तदनंतर सर्वाध्यक्ष सबके नियुक्तिकर्ता मुख्य अधिपति तक कर टैक्स पहुंचाता है, उसी प्रकार बाह्येन्द्रीय पदार्थों को प्रत्यक्ष कर मन को मन संकल्प कर अहंकार को अहंकार अभिमान कर करणों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को विषय समर्पित करता है। इस प्रकार भोग मोक्ष के प्रति पुरुष को सहायता प्रदान करने वाली बुद्धि करणों में सर्वप्रधान सिद्ध होती है। बुद्धि के प्राधान्य का कारण कारिका। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरं सूक्ष्मम्। अन्वय, यस्मात् बुद्धि पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगं साधयति सैव च पुनः सूक्ष्मं प्रधान पुरुषांतरं विशिनष्टि। कारिकार्थ, चूंकि बुद्धि पुरुष के लिए सभी प्रकार के भोगों को उपस्थित करती है और वही पुनः पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति पुरुष के सूक्ष्म भेद को भी करती है, इसलिए वह प्रधान कही गई है। भाष्य इदचान्यत सर्वेन्द्रियगतम त्रिष्वपि कालेषु सर्वप्रत्युपभोगम उपभोगम प्रति देव मनुष्यति रियक्षु बुद्धिन्द्रिय कर्मेन्द्रियाद्वारेण शान्तः करणा बुद्धि साधयति संपादयति यस्मात् तस्मात् सैव च विशिनष्टि प्रधान पुरुषयो विषय विभागं करोति प्रधान पुरुषांतरं नानात्वमित्यर्थ। सूक्ष्ममिति अनधिकृत तपश्चरणैर प्राप्यं इयं प्रकृतिः सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। इयं बुद्धि अहंकारः एतानि पंच तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि पंच महाभूतानि अयम् अन्यः पुरुषेभ्यो व्यतिरिक्त इत्येवं बोधयति बुद्धि यस्या अवापादप वर्गो भवति। गौणपाद भाष्य का भावार्थ। गतकारिका में बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों? मन या अहंकार को ही प्रधान मान लिया जाए, बुद्धि को प्रधान मानने में कोई युक्ति नहीं है। इस शंका के आधार पर प्रस्तुत कारिका में बुद्धि की प्रधानता सिद्ध करने के लिए युक्ति दी जा रही है। प्रकृति की सृष्टि रचना का प्रयोजन पुरुष को सर्वप्रथम भोग और भोग के पश्चात मोक्ष दिलाना है। पुरुष के प्रति भोगापवर्ग को संपन्न कर प्रकृति अपने को कृतकृत्य समझती है। प्रकृति अपने उक्त उद्देश्य की पूर्ति में मुख्यतया बुद्धि तत्व की सहायता लेती है, इसलिए उसने सर्वप्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण भी किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य अहंकार आदि करणों की उत्पत्ति व्यर्थ हुई। अहंकार आदि करण भी उसी चरम उद्देश्य को पूर्ण करना अपना धर्म समझते हैं, अतः राग द्वेष से रहित होकर भी वे स्वगृहित विषयों को बुद्धि तक यथाशीघ्र पहुँचाते जाते हैं, और बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित पुरुष को प्रतिबिंब विधेया विषयों का ग्रहिता एवं भोक्ता बनाती रहती है। विषय ग्रहण के लिए पुरुष सभी कर्णों में पृथक पृथक प्रतिबिंबित होता है, ऐसी सांख्य दार्शनिकों की विचारधारा नहीं है। उनकी मान्यता के अनुसार प्रतिबिंब ग्राहक शक्ति एकमात्र बुद्धि में ही है, अतः वह प्रतिबिंब ग्राहिणी बुद्धि से ही संपर्क स्थापित करता है। इस प्रकार पुरुष के भोक्तृत्व में साक्षात साधन होने के कारण बुद्धि को प्रधान कहा गया है। आचार्य गौणपाद के भाष्य का यही आशय है। विषय रूप विशेष तथा अविशेष कारिका तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश मूढ़ाश्च। अन्वय तन्मात्राणि अविशेषास्तेभ्यः पंचभ्यः पंच भूतानि एते विशेषा स्मृता च शांताः घोराः मूढ़ा च सन्ति। कारिकार्थ शब्दादि पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं अविशेष कही जाती हैं। इन पांच से शब्दादि पांच स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही विशेष कहा जाता है, क्योंकि ये शांत घोर एवं मूढ़ रूप होते हैं। भाष्यम पूर्व मुक्तम विशेषा अविशेष विषयाणि तत्के विषयास्तान दर्शयति यानि पंच तन्मात्राण्यहंकार दुत्पद्यन्ते ते शब्द तन्मात्रम स्पर्श तन्मात्रम रूप तन्मात्रम रस तन्मात्रम गंध तन्मात्रम एतानि अविशेषा उच्यन्ते देवा नामेते सुखलक्षणा विषया दुःखमोहरहिताः तेभ्यः पञ्चभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि पृथिव्य तेजो वायवाकाश संज्ञानि यान्युत्पद्यन्ते एते स्मृता विशेषा गंध तन्मात्रात् पृथ्वी रस तन्मात्रा दापः रूप तन्मात्रा तेजः स्पर्श तन्मात्रा वायुः शब्द तन्मात्रा आकाशः इत्येवमुत्पन्नान्येतानि महाभूतानि एते विशेषा मानुषाणां विषया शान्ताः सुखलक्षणा घोराः दुःखलक्षणा मूढाः मोहजनक यथा आकाशः कस्यचिदन् वकाशादंतर्गृहे निर्गतस्य सुखात्मकः शांतो भवति तदेव शीतोष्णवात वर्षाभिभूतस्य दुखात्मकः घोरो भवति स एव पन्थानं गच्छतो वन मार्गाद् भ्रष्टस्य दिग्मोहान् मूढो भवति एवं वायुर्धर्मार्तस्य शांतो भवति, शीतार्तस्य घोरो धूलि शर्करा विमिश्रितो अतिवान मूढ़ इति, एवं तेजः प्रभृतिषु दृष्टव्यः। गौड़पाद भाष्य का भावार्थ। चौतीसवीं कारिका में इंद्रियों के ग्रहण करने योग्य पदार्थों का विशेष तथा अविशेष रूप से संकेत दिया गया था। प्रस्तुत कारिका में उसी का विशदीकरण हो रहा है। तामस अहंकार से पांच तन्मात्राओं का आविर्भाव होता है, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र तथा गंध तन्मात्र। ये पांच तन्मात्राएं हैं। इन्हें सांख्य योग शास्त्र में अविशेष नाम से परिभाषित किया है। देवताओं की विषयी भूत तन्मात्राएं सुख स्वरूप हैं। ये रजोगुण एवं तमोगुण से रहित हैं। आशय यह है कि यद्यपि इनमें भी रजस एवं तमस रहते हैं, तथापि वे उत्कट सत्वगुण से अभिभूत रहते हैं। इस प्रकार शांतत्व, घोरत्व तथा मूढ़त्व रूप से इनका विभाग नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये अविशेष कही जाती हैं। अविशेष स्वरूप पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूतों का आविर्भाव होता है, जैसे गंध तन्मात्र से पृथ्वी, रस तन्मात्र से जल, रूप तन्मात्र से तेज, स्पर्श तन्मात्र से वायु तथा शब्द तन्मात्र से आकाश भूत उत्पन्न होता है। प्रसंगतः इतना विशेष ज्ञातव्य है कि शब्दादि पंच तन्मात्राओं से समुद्भूत आकाश आदि पांच भूत क्रमशः एक, द्वि, त्रि, चतुः तथा पंच गुणक हैं। यही पांच भूत विशेष नाम से जाने जाते हैं। ये मनुष्यों के उपभोग में आने वाले विषय हैं। भूत विशेष नाम से इसलिए कहे जाते हैं कि इनका सुखात्मक, शांत रूप, दुखात्मक, घोर रूप तथा मोहात्मक मूढ़ रूप अत्यंत स्फुट रहता है। विशिष्यते नेति विशेषः, जैसे गर्भ रूप गृह से बाहर निकला हुआ शिशु अवकाशात्मक प्रदेश में अत्यधिक आनंदित होता है, उसके लिए आकाश सुख प्रद सिद्ध होता है। वही आकाश शीत अथवा उष्ण वायु तथा वर्षा से ताड़ित व्यक्ति के लिए दुखप्रद होता है, तथा वही आकाश अरण्य में मार्ग विस्मृत व्यक्ति के लिए मोहप्रद होता है। इस प्रकार आकाशभूत की सुख दुख मोह जनकता समझ में आ जाती है। अब वायुभूत को लिया जाए, गर्मी से त्रसित व्यक्ति के लिए वायु सुखप्रद, शीत से कंपित व्यक्ति के लिए वायु दुखप्रद तथा धूल कण से मिश्रित अरुचिकर वायु सभी के लिए मोहप्रद सिद्ध होती है। अन्य भूतों की त्रिगुणात्मकता भी इसी प्रकार की है। माठर वृत्ति में अग्नि, जल तथा पृथ्वी भूत के विशेषत्व को भी उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया। विशेषों के अवान्तर भेद तथा उनका स्वरूप। कारिका। सूक्ष्मा माता पितृजाः स प्रभूतः स्त्रिधा विशेषाः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। अन्वय। सूक्ष्मा माता पितृजा प्रभूतः सह विशेषाः त्रिधा स्युः, तेषां सूक्ष्माः नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते। कारिकार्थ। सूक्ष्म शरीर माता पिता से उत्पन्न षाट कौशिक स्थूल देह तथा पश्च स्थूल भूत ये तीन विशेष कहे जाते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर नित्य तथा माता पिता के संयोग से समुपजात स्थूल शरीर निवर्तनशील है। भाष्यम। अथा अन्ये विशेषा सूक्ष्मा तन्मात्राणि यस्संगृहीतं तन्मात्रकं सूक्ष्म शरीरं महदादिलिंगं सदा तिष्ठति संसरति च, ते सूक्ष्माः तथा माता पितृजाः स्थूल शरीरो पचायकाः ऋतुकाले माता पितृसंयोगे शोडित शुकं मिश्रभावे नोदरान्तः सूक्ष्म शरीरस्योपचयं कुर्वन्ति, तत् सूक्ष्म शरीरं पुनर्मातुर् शीत पीत नाना विधरसेन नाभि निबंधने आप्यते, तथा प्यारब्धम शरीरम सुष्मैर माता पितृजैश्च सह महाभूतैस्त्रिधा विशेषैः। पृष्ठों दरजंघा यूर शिरह प्रभृति षाट कौशिकम पांच भौतिकम रुधिर मांस स्नायु शुक्रास्थि मज्जा संभृतम आकाशो अवकाशादानाद वायुर्बद्धनाद तेज पाकाद आपह संग्रहाद पृथ्वी धारणात समस्ता वयवोपेतम मातु रुद्राद बहिर्भवति एवमेते त्रिधा विशेषा स्युः अत्राह के नित्याह के वा अनित्याह सूक्ष्मास्तेषां नियताः सूक्ष्मा तन्मात्र संज्ञा कास्तेषां मध्ये नियताः नित्याः तैरारब्ध शरीरं धर्मवशात् पशु मृग पक्षी शरीर श्रीप स्थावर जातिषु संसरति धर्मवशाद इंद्रादि लोकेषु एवमेतन नियतं सूक्ष्म शरीरं संसरति न यावज ज्ञानमुत्पद्यते उत्पन्ने ज्ञाने विद्वान शरीरं त्यक्त्वा मोक्षं गच्छति तस्मादेते विशेषा सूक्ष्मानित्या इति माता पितृजा निवर्तन्ते तत् सूक्ष्म शरीरं परित्यज्येहैव प्राण त्याग वेलायां माता पितृजा निवर्तन्ते मरण काले माता पितृजं शरीरं मी हैव निवृत्य भूम्यादिषु प्रलीयते यथा तत्त्वं गौणपाद भाष्य का भावार्थ गत कारिका में ज्ञान के विषयीभूत दो प्रकार के पदार्थों के बारे में कहा गया है। संप्रति आचार्य ईश्वर कृष्ण वर्तमान कारिका द्वारा विशेष के प्रभेदों का व्याख्यान करते हैं। जैसा कि अग्रिम कारिका में बताया जाएगा कि सूक्ष्म शरीर 18 अवयवों का संघात विशेष है। सूक्ष्म शरीर के 18 अवयवों में 5 तन मात्राएँ भी आती हैं। आचार्य गौड़पाद विशेष के प्रथम भेद सूक्ष्म शरीर के तन मात्र घटक होने से उसी के आधार पर कारिकागत सूक्ष्मा पद की व्याख्या करते हैं। सूक्ष्मा पद का अर्थ तन मात्राएं हैं, उससे संग्रहित तत्व तन मात्रक हुआ। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर तन मात्रक है। आशय यह है कि सृष्टि के आरंभ में तन मात्राओं से ही तीनों लोकों के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर का दूसरा विशेषण महदादि लिंग है, अर्थात जिसके आदि में महत तत्व है। ऐसा सूक्ष्म शरीर लयशील अर्थात प्रलय काल में लय को प्राप्त हुए सूक्ष्म शरीर का सृष्टि काल में पुनः आविर्भाव होता है। इस प्रकार विशेष के प्रथम भेद सूक्ष्म शरीर की व्याख्या समाप्त हुई। माता पितृजा माता पिता के संयोग से उत्पन्न स्थूल शरीर दूसरे प्रकार का विशेष है। उसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य गौणपाद लिखते हैं, स्थूल शरीर के उपचायक ऋतुकाल में माता पिता के संयोग वशात शोणित एवं शुक्र के एकत्रीभवन से शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर को परिपुष्ट करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर नाभि के माध्यम से माता द्वारा खाए पिए युक्त पीत अनेक प्रकार के रसों से तृप्त होता है। ऊपर वर्णित दो प्रकार के विशेष तथा महाभूत को मिलाकर तीन प्रकार के विशेष हो जाते हैं। द्वितीय प्रकार के विशेष स्वरूप स्थूल शरीर के निर्माण में तीसरे प्रकार का विशेष सहायता प्रदान करता है। स्थूल शरीर को अवकाश प्रदान करने में आकाश, विहरण करने में भूमि, शरीर के अवयवों का संगठन एवं शुद्धिकरण में जल, भुक्त अन्नादि के परिपाक में अग्नि तथा शरीर की वृद्धि में वायु सहायक होती है। इसलिए साठ कौशिक रुधिर मांस स्नायु शुक्र अस्थि तथा मज्जा इंसर्ट कोश वाला स्थूल शरीर पांच भौतिक कहा जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि अंतःस्थित सूक्ष्म शरीर से युक्त पांच भौतिक स्थूल देह माता के अंदर से बाहर निस्सृत होता है। ऊपर उल्लिखित तीन प्रकार के विशेषों में तन मात्र संज्ञक विशेष अर्थात सूक्ष्म शरीर नित्य है। तन मात्राओं से निर्मित यह सूक्ष्म शरीर अधर्म के कारण पशु मृग पक्षी शरीर श्रीप तथा स्थावरादि योनियों में संसरण करता है और धर्म के कारण इंद्रादि लोकों में नित्य सूक्ष्म शरीर का संसरण व्यापार तब तक चलता है जब तक व्यक्ति में विवेक ज्ञान जागृत नहीं होता है। साधना द्वारा विवेक ज्ञान के उत्पन्न होते ही प्रारब्ध कर्मजन्य भोग के पश्चात व्यक्ति का शरीर से संबंध छूट जाता है। पुरुष की ही यही केवलता शरीरा संपृक्तता कैवल्य कही जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की नित्यता का यह अर्थ हुआ कि चेतन पुरुष के मोक्ष से पूर्व तक प्रत्येक पुरुष के साथ एक एक सूक्ष्म शरीर का नियत संबंध रहना स्थूल शरीर नाशशील है। प्राणोच्छेद होते ही माता पितृज स्थूल शरीर निवृत्त हो जाता है, अर्थात पांच भौतिक स्थूल शरीर के पार्थिव आदि अंश अपने अपने भूत में समाविष्ट हो जाते हैं। विशेष का तृतीय भेद बाह्य पंच महाभूत तो निवर्तनशील ही है। सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कारिका पूर्वोत्पन्नम सक्तम नियतम महदादि सूक्ष्मम पर्यंतम संसरति निरूप भोगम भावैरधिवासितम लिंगम। अन्वय पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम निरूप भोगम भावैरधिवासितम लिंगम संसरति कारिकार्थ। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न व्यवधान रहित अर्थात इच्छानुसार शिला परमाणु आदि में प्रवेश की सामर्थ्य से युक्त मोक्ष पर्यंत नित्य महदादि से लेकर सूक्ष्म तन्मात्र पर्यंत पदार्थों से निर्मित स्थूल शरीर के बिना भोग की सामर्थ्य से रहित धर्मादि आठ भावों से युक्त तथा महाप्रलय के समय लय को प्राप्त होने वाला लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। भाष्यम सूक्ष्मम च कथम संसरति तदाह यदा लोका अनुत्पन्नाः प्रधानादि सर्गे तदा सूक्ष्म शरीरमुत्पन्नम् मिति किंचान्यत् असक्तम् न संयुक्तम् तिर्ययो निदेव मानुष स्थानेषु सूक्ष्मत्वात् कुत्रचिद् सक्तम् पर्वतादिषु अप्रतिहत प्रसरम् संसरति गच्छति। नियतम यावन ज्ञान उत्पद्यते तावत संसरति तच्च महदादि सूक्ष्म पर्यंतम महानादौ यस्य तत् महदादि बुद्धिर अहंकारो मन इति पंच तन्मात्राणि सूक्ष्मा सूक्ष्म पर्यंतम तन्मात्र पर्यंतम संसरति। शूल ग्रह पिपीलिकावत लोकान त्रीनपि लोकान निरूप भोगम भोग रहितम तत् सूक्ष्म शरीरम माता पितृजेन वाह्ये नोपचयेन क्रियाधर्म ग्रहणाद् भोग भोगेषु समर्थं भवति इत्यर्थ। भावैरधिवासितं पुरस्तद्भावान् धर्मादीन् वक्ष्यामः। तैरधिवासितं उपरि जीतं लिंगमिति प्रलयकाले महदादि सूक्ष्म पर्यन्ते कर्णोपेतं प्रधाने लियते असंसरण युक्तं सत् आसर्ग कालमत्र वर्तते प्रकृति मोह बंधन वद्धम सत संसरणादि क्रिया स्वसमर्थमिति पुनः सर्ग काले संसरति तस्मा लिंगम सूक्ष्मम। गौणपाद भाष्यका भावार्थ गत कारिका में ज्ञान के विषयीभूत विशेष के तीन अवांतर भेदों की ओर जिज्ञासियों का ध्यान आकृष्ट किया गया। उनमें से सूक्ष्म शरीर के विषय में विशेष विचार करना आवश्यक है। संप्रति तत्संबंधित एकाधिक कारिकाएं उपस्थित की जा रही हैं। सृष्टि के आदिकाल में जब लोगों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तभी प्रधान ने सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया, अर्थात सर्व प्राथमिक सृष्टि के समय प्रधान ने प्रत्येक पुरुष के लिए एक एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया, इसलिए सूक्ष्म शरीर को पूर्वोत्पन्न कहा गया। सूक्ष्म शरीर असक्त है न संयुक्तम असक्तम अर्थात देव मनुष्य तिर्यगादि योनियों में संयुक्त होकर नहीं रहता है। अमल पद का दूसरा अर्थ गति का विघात न होना है, अर्थात सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीर अप्रतिहत गति से पर्वतादि में प्रवेश कर पाता है। सूक्ष्म शरीर नियत है। सूक्ष्म शरीर प्रकृति पुरुष की भांति अनादि और अनंत अर्थात नित्य नहीं है तथा स्थूल देह की भांति देहपात के पश्चात नष्ट नहीं होता है। मध्यम स्थानीय यह तत्व विवेक ज्ञान के पूर्व तक जन्म जन्मांतर पर्यंत नियत रहता है। निर्दयी मृत्यु देहपात उसे नहीं झकझोर पाती, लेकिन विवेक ज्ञान के आगे उसकी नहीं चलती। विवेक ज्ञान के समक्ष उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। विवेकाग्नि उसके स्वरूप को तहस नहस कर ही देती है। निष्कर्ष यह हुआ कि अज्ञान के कारण जन्म जन्मांतर पर्यंत अपनी स्थिति बनाए रखने वाला सूक्ष्म शरीर विवेक ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की स्थिति के प्रतिद्वंदी विवेक ज्ञान का स्वरूप आगे बताया जाएगा। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम इस अंश से सूक्ष्म शरीर के बी घटक तत्वों की ओर इंगित किया है। बुद्धि अहंकार मन तथा पंच तन मात्राओं का समष्टि रूप सूक्ष्म शरीर है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर अष्टावयवात्मक है। यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि आचार्य गौड़पाद का सूक्ष्म शरीर उक्त आठ अवयवों वाला सिद्धांत सांख्य शास्त्रियों की समादरणी प्रतीत न हुआ और यह अष्ट संख्या अष्टादश में परिवर्तित हुई। आचार्य वाचस्पति मिश्र आदि सांख्य के व्याख्याकारों ने उक्त आठ तत्वों में दस ज्ञानेन्द्रियों को समाविष्ट कर अष्टादश संख्या को पूर्ण किया। सूक्ष्म शरीर निरूप भोग है, उसमें स्वतंत्र रूप से शब्दादि विषयों का उपभोग करने की सामर्थ्य नहीं है। वह स्थूल शरीर की सहायता से ही अर्थात उसमें अधिष्ठित होकर ही भोग कर पाता है। इसी सिद्धांत के पुष्टिकरण के लिए आचार्य गौड़पाद लिखते हैं कि सूक्ष्म शरीर माता पिता के संयोग से उत्पन्न स्थूल शरीर की सहायता द्वारा क्रियाधर्म को ग्रहण करने में समर्थ होता है। यही सूक्ष्म शरीर का भोग कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर भावैर अधिवासितम है। धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ऐश्वर्य अनैश्वर्य वैराग्य अवैराग्य ये आठ भाव माने जाते हैं। सूक्ष्म शरीर इन आठ भावों से उपरंजित रहता है। तात्पर्य यह है कि उक्त आठ भाव बुद्धि के धर्म हैं। बुद्धि सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है। अवयवतम बुद्धि के धर्म अवयव रूप सूक्ष्म शरीर में उपसंक्रमित होने से सूक्ष्म शरीर भावयुक्त कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर लिंग है। प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर के संघटक तत्व महत्व से लेकर तन्मात्र पर्यंत प्रधान में लीन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर का संसरण पुनः सृष्ट उद्भव पर्यंत अवरुद्ध रहता है। यह इसलिए होता है कि इस समय सूक्ष्म शरीर प्रकृति के मोहबंधन में अत्यधिक जकड़ा रहता है। अतः लिंग को भी सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कहा गया है। उपर्युक्त वर्णन से सूक्ष्म शरीर का स्वरूप समझ में आ जाता है।